प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, पुस्तक 9, लेक्चर नंबर 719। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्षायाणं, नमो लोए सौवसाहुरं। सुर असुर नरपति वंद्यने प्रविनष्ट घाति कर्मने, प्रणमन करूहु धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने, वरिशेष तीर्थंकर ने, सौसिद्ध शुद्धास्तित्व ने, मुनि ज्ञान दृग चारित्र तपवीर्या चरण संयुक्त ने, ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदुवळी हो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने, अरहंतने सौसिद्धने य नमस्करण करिए रीते। कर्णधर ने अध्यापको ने सर्व साधु समूह ने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने, प्राप्ति करूहु साम्यने ये नाति शिव प्राप्ति वने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेन आचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका की रचना की है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए है। उसमें से ये 9वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 48 पर मांगे 48 एक पैराग्राफ हुआ था अपना 3-4 लाइन का, नया दूसरा पैराग्राफ वहां से पढ़ते हैं। यहां तो कहते हैं कि अनुभव में अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। एक्चुअली वो अनुभव चिंतामणि रत्न ऐसा है ना, ठीक है, अर्थ एक ही है। कहाँ लिखा है मालूम है? नाटक समय अनुभव, अपने निज स्वरूप के अनुभव बिना जंगल में जैसे रोज वर्तते हैं, रोज समझते हैं हरण, उसको रोज कहते हैं, पहली बार सुना मैंने। और गांव में कुत्ता वो कुरस्व चाहिए, बसता है नहीं रहता है। मेरे ख्याल से गुजराती क्रियापद है क्या गांव में बसना, या बसना के अर्थ में बसता है, वो के बदले बस या रहता है करो तो अच्छा है, वो के वो करो बसता है तो चलेगा। निवास करता है, वास करता है, इस तरह से ऐसा है। दीपचंद जी तो ऐसा कहते हैं, ऐ आहा, अपने निज स्वरूप का अनुभव नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, वह चाहे तो वन में बसो तो हरण तुल्य रोज समान है, और गांव में बसो तो कुत्ते समान है। अब ये भी खूब रस्व करना, यानी जंगल में रहना तो वहां तो जंगली जानवर भी रहते हैं, हिरण भी रहते हैं, और गांव में रहते तो कुत्ते भी गांव में रहते हैं, तो कहीं रहने से मुनिपना नहीं आता है। वस्तु का भान नहीं आहा, इतना दीपचंद जी ने कहा है। अनुभव प्रकाश समझ में आया, अपने यहां हुआ था अनुभव प्रकाश, संडे को चलता था, गुरुदेव के प्रवचन हुए ना अनुभव प्रकाश के ऊपर। और बनारसी दास कहते हैं, अनुभव वाला प्राणी चाहे तो जंगल में रहो चाहे तो गांव में रहो, समझ में आया। अंतर में दृष्टि और ज्ञान में तो सबका त्याग ही है। क्या कहना चाहते हैं? दृष्टि और ज्ञान में त्याग है का अर्थ क्या है? दृष्टि स्वभाव की हो गई है, स्वभाव को उसने स्वरूप से पकड़ लिया, उस स्वभाव में तो राग है ही नहीं, यानी राग के त्याग स्वरूप, यानी राग के अभाव स्वरूप ही स्वभाव है। इसलिए दृष्टि और ज्ञान में तो राग का त्याग ही है, पर्याय में राग है, दृष्टि में ज्ञान में उसका स्वीकार नहीं है, वो मेरा है मैं उस रूप को, ऐसा उसमें स्वीकार नहीं है। वह बनारसी दास ने लिया है, चाहे रहो घर में चाहे रहो वन में, उदास है। सम्य दर्शन, ये उदासीनता क्या होती है? विरक्तता, जैसे पर से उदासीनता जिसको कहेंगे, उदासीन है। ये उदासीन है क्या? जैसे किसी की मौत हुई घर में तो मुंह लटक के उदासीन होकर बैठता, वो नहीं, वो स्मशान वैराग्य की बात नहीं है। हाँ, यानी पर के प्रति कोई राग के प्रति ही वो विरक्त है, राग से अपनी भिन्नता जानते। सम्य दर्शन और सम्य ज्ञान क्या चीज है और कैसे प्राप्त होती है उसकी खबर नहीं, और ऐसे ही मान ले, और ऐसे सम्य दर्शन बिना व्रत ले लिए, परिमा धारण कर ली, परिमा ने प्रतिमा जो पांचों गुणस्थान के योग्य होती है, परंतु वहां तो वितरागता के साथ है तो उसको हम गुणस्थान कहेंगे, वो प्रतिमा कहेंगे, तो केवल बाह्य में अंगीकार करने को उसका नाम नहीं दिया जाता। 2, 4, 5, 7, 8 और 11 प्रतिमा तक ले ले, विशेष न हो तो, हमारे मुमुक्षु कहते हैं कि विशेष न हो तो विशेष ले ले, लेकिन क्या करे, 11 से ज्यादा है नहीं, 12वीं 13वीं परिमा है नहीं, कुछ खबर नहीं ना। परिमा किसको कहते हैं भाई? अंतर में आनंद की शांति का शेरड़ा, शेरड़ा को क्या कहते, धार, आनंद की धारा, शेरड़ा काठियावाड़ी भाषा है, क्या कहते हैं? अंतर में आनंद की शांति की धारा, आहा झरना, आनंद आनंद आनंद, जिसके पास शुभ भाव भी दुख लगे, दुख लगे जहर लगे, आहा समझ में आया। भगवान का स्मरण और शास्त्र के वाचन का विकल्प भी, जिसके आगे दुख लगे, किसके आगे? अनुभव का जो आनंद का वेदन है, अनुभव है, उसके सामने ये सब दुख रूप लगते हैं। ऐसी चीज का भान हुआ, पीछे कहते हैं कि राग का तो त्याग है ही, राग में दुख है, दुख है, अनंत आनंद स्वरूप भगवान आत्मा। देखो, अभी अनंत आनंद का अनुभव नहीं हुआ है, परंतु उसका निर्णय हो गया है, क्योंकि उसका लक्ष्य करने से पर्याय में आनंद का अनुभव हो गया है। अभी जितनी मात्रा में उतना तो जैसा है स्वभाव, उतना तो पूरा का पूरा आनंद का अनुभव नहीं है, परंतु स्वसंवेदन रूप जो अनुभव से जो आनंद की, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति उसको हो गई है, स्वभाव का निर्णय हो चुका है। दृष्टि में तो उसको परिणमन हो गया, आहा हा। अब कोई बात, राग त्यागना है ऐसा रहा नहीं, दृष्टि और ज्ञान में तो त्याग ही है। देखो कितनी बार ये बताई बात, कल से 3-4 बार तो बताए, क्या कहते हैं? तो राग त्यागना है ऐसा रहा नहीं, क्यों नहीं? दृष्टि और ज्ञान में तो त्याग ही है, क्योंकि उसमें तो वो राग दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब उस स्वभाव की दृष्टि करके उसी में उपयोग लगाया है तो अबुद्धिपूर्वक में चला जाता है वो, तो राग उनको तो पता ही नहीं है वहां पर है? लेकिन स्वरूप में स्थिरता नहीं, देखो जब स्वरूप में स्थिरता नहीं तो वो राग का वह दुख रूप वेदन भी चलेगा, राग का ज्ञान भी चलेगा, इसलिए ऐसा शुभ राग प्राप्त हो जाता है। फिर भी अशुभ से अशुभ के बदले शुभ राग आता है। अभी उनके भूमिका में ऐसे ही राग उनके होगी शुभ राग। मुनि को अशुभ राग तो है नहीं, समझ में आया? शुभ राग हो उसको ऐसा कहते हैं कि त्याग है, फिर भी अंगीकार करते ऐसा कहने में आता है। बात यही चल रही नहीं है? चरणानियोग चूली का है, चरणानियोग की शैली ऐसी है कि उन्हें तो शुभ राग आता है और उसको अंगीकार करते ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। ऐसी बात है, आहा हा, ऐसा मार्ग है प्रभु। यहाँ लिखा ना मुनि को अशुभ राग तो है नहीं। आपको याद है बिना में एक आए थे, एक पति पत्नी आए थे हमारे पास, वहां एक मोबाइल लेके आए थे, इनसे बात करो इनसे बात करो। वो किसी को गुरु मानते थे, कोई पंडित कहलाता था अपने को, सोनागिरी में या कहीं से रहता था पता नहीं है, मुमुक्ष नहीं था कोई अन्य था। वो उसने पुस्तकें निकाली थी, टोडल मंजी साहब ने कैसी भूले की ऐसा कर करके उन्होंने ऐसी पुस्तक निकाली। देखो यहाँ तो लिखा है मुनि के तो शुभ उपयोग तो होता ही नहीं है, और उसने क्या क्या कर्मकांड वगैरह का आधार लेकर, देखो यहाँ बंधे विच्छित्ति होती है ना, कौन सी छठे गुणस्थान की याद है लक्ष्मी, असाता वेदनीय सब अ वाली है,
पांच अ वाली है,
हाँ भूल गए सब। नहीं नहीं नहीं, हाँ अस्थिर है, अशुभ है, असाता वेदनीय है, अयशस कीर्ति है, अरति और शोक है। तो ऐसे देखो वहां बनती है, वे पाप प्रकृतियां बनती है, तो उनको तो शुभ राग होता ही होता है, उसके बिना थोड़ा ही होगा। ऐसे करके लोगों को भड़काते थे।
नहीं नहीं,
और लोग भी है देखो, ये तो कोमट साहब बता रहे,
उनका कुछ अलग सा भी कहना था, आप बोलो। यानी वो कह रहे थे उनको शुभ राग नहीं है तो ये छठे में तो बंद होता है।
वही तो मैं कह रही हूँ, वही मैं बता रही हूँ कि छठे तक बनती है, वहां बंद विच्छित यानी छठे तक बनती है मुनिराज को, तो अशुभ उपयोग होता है इसीलिए बनती है कि नहीं, अशुभ प्रकृतियां लोगों को मालूम ही नहीं ना कहाँ क्या बनता है। अब ज्ञानावरण शुभ है कि अशुभ है? सब अशुभ ही है। कहाँ तक बनती मालूम है? दसवें गुणस्थान तक। तो वहां अशुभ, तो वहां क्या अशुभ अशुभ उपयोग चल रहा है क्या उसका? ख्याल में आई ना? लोगों को पता नहीं है कौन से गुण। अभी ये जो शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग जो कहने में आता है, उनके अशुभ होता ही नहीं है, तो ये तो बुद्धिपूर्वक की अपेक्षा बताए, जो छद्मस्थ के बुद्धि गोचर होते हैं उसके अपेक्षा से द्रव्यानियोग उसको शुभोपयोग कहेगा, अशुभोपयोग कहेगा या शुद्धोपयोग कहेगा। कर्णानियोग की बात अलग होती है, और ये कर्णानियोग के कुछ ऐसे उदाहरण लेके लेके लोगों को भड़काते हैं, देखो इन्होंने गलती की, देखो इन्होंने गलती की, यानी उनको गलत साबित करने से स्वयं को महान बताना चाहते हैं। और भी बहुत के देने नहीं है, हुकुमचंद भारू जी के ये मिस्टेक है, आप उनका फोन करो ना, उनकी हमसे क्यों बात करते हैं, हम क्या उनके कुछ सेक्रेटरी है क्या? ये समाज में क्या कुछ ना कुछ ऐसे लगा देते, अपना स्वयं का अभ्यास नहीं है ना, उसमें से कुछ सब पता चलता है और ऐसे ही बातें चलती रहती। वो बिना में गए थे ना, तब आए थे कोई,
वो आदमी डेढ़ घंटे बात करके रहा, हम खाना खा के आए तो 12 बजे से 12:30 से 1:30 बजे तक।
अरे कितना मना किया तो भी हटने को तैयार नहीं।
तो ये तो नरम नरम बात करे, मैं बोला इधर, मैं बोला देख ये हमारा टाइम प्राइम टाइम है सोने का, इस टाइम में तुम डिस्टर्ब मत करो, इसके आगे तुम फोन मत करो, आपको जो मैंने हमने पुस्तक निकाली है, आपने मेहरबानी की है पुस्तक निकाली है, वो सब गलत है, इसके आगे फोन करने की कोशिश मत करना। मैं तो सीधा ही उड़ा, ये भी एकदम ठंडे ठंडे।
देखो आगे पढ़ेंगे, लेकिन मुनियों को अशुभ राग तो है ही नहीं, अभी सब जगह बता रहे ना, अकेले टोडरमल जी थोड़े ही बता रहे। तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि छठे गुणस्थान वर्ती को क्या है? शुभ उपयोग है, अशुभ उपयोग नहीं है।
वो तो
वाले का शुद्ध उपयोग है।
यहाँ जो शुभोपयोगी है शुभोपयोग नहीं है ये बात टोडर मंडली ने इसमें भी ली है,
उसी को उन्हीं को
मोक्ष मार्ग का प्रकाशक,
वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर ही उनका
ऑब्जेक्शन
था, क्योंकि किसी महान व्यक्ति को नीचे दिखाएंगे तो वो महान कहलाना चाहते है, ये उनका प्रयोजन था। देखो नया पैराग्राफ 49 पेज पर, तथापि पर्याय में शुभराग नहीं छूटने से, देखो पर्याय में शुभराग नहीं छूटने से वह पूर्वोक्त प्रकार से पंचाचार को ग्रहण करता है, वो ग्रहण करता है ऐसी यहाँ भाषा आएगी। जैसे अज्ञानी मानते हैं ना मैं ऐसा करता हूँ, उसमें कर्ता बुद्धि है, परंतु यहाँ छूटता नहीं है राग तो उसको ग्रहण करता हूँ ऐसा कहने की पद्धति है। पर्याय में राग छूटता नहीं, पुरुषार्थ की कमी है, कमी है ऐसा कहने का हक किसको है कि जिसे पुरुषार्थ चिदानंद अखंड पूर्ण दृष्टि में आया है, समझ में आया है, ये स्वयं कह सकते हैं कि मेरी पुरुषार्थ की कमी है। और जो भी मिथ्या तो मैं ऐसा नहीं कहती कि मुनिराज के पुरुषार्थ की कमी है, यह लिखा ना पुरुषार्थ कमी है ऐसा कहने का हक किसको है कि जिसने पुरुषार्थ पूर्वक स्वयं आत्मा का अनुभव किया है वो कह सकता है। पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, पूर्ण शांति, ऐसा सम्यक दर्शन में जिसको पूर्ण आनंदादि पूर्ण स्वरूप अनुभव में आया है, देखो स्वभाव या जिसका अनुभव करना है वो उस चीज कैसी है, पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, अभी हर एक गुण पर लगा लो, पूर्ण शांति, ऐसे आनंद आदि में सभी अनंत गुण ले लिए, वो सभी की पूर्ण स्वभाव की बात है ना, स्वभाव तो हमेशा परिपूर्ण रहता है, स्वभाव में कोई कमी नहीं रहती और कभी हीनादिक भी नहीं रहता, तो ऐसा स्वभाव जो परिपूर्ण है उस वह अनुभव में आया, अनुभव में पूर्णता नहीं हुई है, वो पूर्ण है ऐसा अनुभव किया, उस दृष्टि से राग की मंदता है और पुरुषार्थ की कमी है ऐसा जानने में आता है। लेकिन वस्तु की खबर नहीं और मुझे राग की मंदता है और उससे राग आता है ऐसा नहीं, क्या कहा, जिसको अनुभव ही नहीं है और बस राग की मंदता को ही वो मान लेता है कि अरे मैं मुनि हो गया। मंदता किसकी अपेक्षा से, वो किसकी में पहला की है, वो रस्व करना, देखो ये मंदता किस अपेक्षा से कह रहे हैं, तो कि भगवान परिपूर्ण आनंद कंद पुरुषार्थ का पिंड है, यानी अनंत वीर्य का पिंड है, ऐसा अनुभव में आया उसके साथ मिलाते हैं तो राग मंद आता है, वह मेरी कमजोरी है, यानी वहां पर मंद राग है वो अपनी कमजोरी से आ रहे, वह त्रिकाल की जोर की अपेक्षा से राग की कमजोरी मानने में आता है। सबलता का भान हुआ, सबलता क्या है, अपना जो परिपूर्ण स्वभाव है उसका भान हुआ है, ये अपना बल आत्मिक बल है, उसका भान हुआ, उस अपेक्षा से निर्बलता ख्याल में आती है। निर्बलता क्या है आशा बेन, राग आना, राग का उत्पन्न होना, ये निर्बलता है, कमजोरी की निशानी है ना, वो उतनी मात्रा में स्वरूप स्थिरता नहीं है। सबलता का ख्याल नहीं और मेरी निर्बलता है ऐसा कहे तो ऐसी वस्तु है नहीं, ये क्या कहना चाहते हैं, यहाँ तो अपने पुरुषार्थ जो स्वभाव रूप पुरुषार्थ है उसको ख्याल में लेते हैं, उसका अनुभव है तो हम कहेंगे कि हमारी पर्याय में कमजोरी है, निर्बलता है, और वो उसका अनुभव तो है नहीं, बस मेरी निर्बलता है, मेरी निर्बलता है, किस अपेक्षा से निर्बलता, यहाँ सबलता की अपेक्षा वहां निर्बलता कहने में आएगी, क्योंकि स्वरूप में कुछ स्थिरता हुई है परंतु और अधिक नहीं है तो कहेंगे इतनी निर्बलता है, पर जिसके स्वरूप में स्थिरता रूप सबलता हुई ही नहीं है वो कैसे कहेंगे इतनी निर्बलता है, ख्याल में आई ना बात, हाँ ये कहना क्या कहते, देखो सबलता का ख्याल नहीं और मेरी निर्बलता है ऐसे कहे तो ऐसी वस्तु है नहीं, यानी वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। समझ में आया? वस्तु ऐसी है। लो 202 गाथा पूरी हुई। अब 203 के हेडिंग में कहते पश्चात वह कैसा है इसका उपदेश करते हैं। मैं हिंदी पुस्तक में से देखती हूँ। पहले तो 202 में क्या बताया कि जो श्रामण्यत्व पकड़ना चाहता है वो पहले क्या करता है, तो पहले में तो अपने कुटुंबी जनों से विदा लेता है और पंचाचार अंगीकार करता है, ऐसा आया था। अब आगे की जो गाथा है 203 नंबर की, अथ अतः कीदृशो भवति इति उपदिशति, यानी वो पश्चात वह कैसा है इसका उपदेश करते हैं। यानी पश्चात वो क्या करता है, मुनि होने जा रहा है, पहले क्या किया उसने, माता पिता स्त्री पुत्र आदि से विदा ली और पंचाचार का अंगीकार करता हूँ इस तरह से उन्होंने बताया। अब क्या आगे क्या करेंगे, अब कैसा है वो जीव, ये बात बताने जा रहे हैं। गाथा पढ़ते हैं। समणम गणिम गुणढम कुलरूवयो विशिष्ट मिट्टधरम समणे पितं पिपणदो परिच्छमं चेदि अनुगहिदो मुझने ग्रहो कही प्रणत थाय अनुगृहित थाय गणी वडे वयरूप कुल विशिष्ट योगी गुणाढ्यने मुनीष्ट जे। ये बराबर है कि इसमें सनम गणिम गुणढम कुलरूव वयो विशिष्ठ मिठधरम समनेहिम समनेहिम नहीं समनेहि तम पिपणदो, ही के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए,
हिम के ऊपर
बिंदी नहीं चाहिए। समनेहि तम पिपणदो परिच्छमम चेदि अनुगहिदो। बराबर। अभी हम इसका अन्वयार देखते हैं। आपके 51 पेज पर है। मैं हिंदी में से देखती हूँ। अन्वयार जो श्रमण है गुणाढ्य है कुल रूप तथा वैसे विशिष्ट है और श्रमणों को अति इष्ट है, ऐसे गणी को, गणी किसको कहेंगे, गुणी नहीं गणी, ऐसे गणी को लिखे ना, यानी आचार्य, दीक्षा जिनसे लेंगे ना उनको कहेंगे ना आचार्य, गण मुनि गण है और वो गणी है, हाँ संघ के आचार्य, ऐसे गणी को माम प्रतिच्छेति मुझे स्वीकार करो ऐसा कहकर, उनको कहें मुझे स्वीकार करो का अर्थ क्या है, वो अभी दीक्षा मुनि बनना चाहते हैं तो आपके संघ में मुझे स्वीकार करो ऐसा कहकर प्रणत होता है, प्रणत होता है नमस्कार करता है, नत होता है प्रणत होता है, प्रणाम करता है और अनुग्रहित अनुग्रहित होता है यानी उपकृत होता है, अनुग्रहित होने ने क्या उपकृत होना। देखो गुजराती में क्या लिखा है, जे श्रमण छे गुणाढ्य छे कुल रूप तथा वैति विशिष्ट छे अने श्रमणों ने अतिष्ट छे एवा गणी ने मारो स्वीकार करो एम कही ने प्रणत थाय छे एटले प्रणाम करे छे अने अनुग्रहित थाय छे। अब हम टीकाएं पढ़ेंगे दोनों। पहले अमृतचंद्राचार्य की पढ़ते पश्चात पश्चात यानी पहले गृहस्थ में यानी अपने कुटुंबीजनों से विदा ली है और पंचाचारों को मैं अंगीकार करता हूँ ऐसा कह दिया उन्होंने। अब कहते पश्चात श्रामण्यार्थी, ताराबेन श्रामण्यार्थी का अर्थ याद है क्या? श्रमण ने क्या मुनि, श्रामण्य ने मुनिपना और उसका अर्थी, जैसे विद्यार्थी किसको कहेंगे? जो विद्या हासिल करना चाहता है। भोजनार्थी किसको कहेंगे? भोजन का इच्छुक। तो श्रामण्यार्थी का अर्थ क्या है? जो श्रमण होने को इच्छुक है वो श्रामण्यार्थी। ख्याल में आई बात? शब्द का अर्थ हमको ख्याल में आएगा ना तो क्या कहना चाहते हो? ये शब्द आया था ना, श्रमण और श्रामण्यार्थी शब्द आया था। पश्चात श्रामण्यार्थी प्रणत और अनुग्रहित होता है। प्रणत होता है ना, वो नमस्कार करता है और उनसे अनुग्रहित है ना, वो इस प्रकार है कि आचरण करने में और आचरण कराने में आने वाली समस्त विरति की प्रवृत्ति के समान आत्मरूप, समान है उसके बराबर, उसके तुल्य। नीचे फुटनोट में मैं यहाँ पढ़ती हूँ हिंदी पुस्तक में से, समान का अर्थ है तुल्य, बराबर, एक सा, यानी मिलता हुआ। तो यह क्या कहा? विरति की प्रवृत्ति के समान आत्मरूप, यानी विरति की प्रवृत्ति के तुल्य आत्मा का रूप, अर्थात विरति के प्रवृत्ति से मिलती हुई यानी उसके समान आत्मदशा, सो श्रामण्य है। क्या कहते हैं? फिर से पढ़ते हैं कि आचरण करने में और आचरण कराने में आने वाले, आचरण कराने यानी आचार्यों से आचरण कराने में आती है ना, क्या है? दशा, आत्मदशा, वह श्रामण्य ऐसा कहेंगे। कराने में आने वाली समस्त विरति की प्रवृत्ति के तुल्य समान आत्मरूप, ऐसे श्रामण्य पने के कारण जो श्रमण है, जो ऑलरेडी श्रमण है उनकी बात क्या है? ये श्रामण्य कैसा है कि आचरण करने में और आचरण कराने वाली विरति की प्रवृत्ति की जो बात, यानी उनकी वो प्रवृत्ति है, ऐसे श्रामण्य का आचरण करने में और आचरण कराने में प्रवीण होने से, प्रवीण यानी एक्सपर्ट, किसमें एक्सपर्ट है? ऐसे आचरण करने में और कराने में, ये आचार्यों की जो होती है ना, आचार्य क्या होते हैं? ऐसे आचरण अपने मुनि संघ से करा लेते हैं, मुनि योग्य जो आचरण है उनको दीक्षा देना, शिक्षा देना, उनके जो सब मुनि योग्य आचरण उनके होते हैं कि नहीं वो, और उनके सामने जाकर वो सब अपना दोषों का वो करते ना, प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि सब हो जाता है। तो कहते इसलिए उनको कहेंगे गुणाढ्य, गुणाढ्य गुण से युक्त, ऐसे यानी वो स्वयं श्रामण्य का आचरण करते हैं और आचरण कराने में प्रवीण होते हैं, इसलिए उनको गुणाढ्य कहा। सर्वलौकिक जनों के द्वारा निशंकतया सेवा करने योग्य होने से, ये उनके जो क्या क्या विशेषताएं हैं किसके? आचार्य की, इसको बता ले। यानी सभी लौकिक जनों के द्वारा निशंकतया सेवा करने योग्य होने से और कुलक्रमागत, कुलक्रम से उत्तर आने वाले क्रूरतादि दोषों से रहित होने से जो कुल विशिष्ट है, जैसे अच्छे कुल के है, क्योंकि हम देखते हैं ना इसे नीच जाति के कुल परंपरा कैसी आती है, वो क्रूर होते हैं स्वभाव से ही, और जिसको कहने आचरण में भी हिंसा वगैरह का कुछ विवेक से रहित ऐसे होते हैं, तो कुल क्रम से यानी कुल से भी अच्छे कुल के है ये कहना चाहते, कुल विशिष्ट है। अंतरंग शुद्ध रूप का अनुमान कराने वाले बहिरंग शुद्ध रूप होने से जो रूप विशिष्ट है, यह अंतरंग में उनकी वितरागता प्रकट है और उनका जो बाह्य स्वरूप है वो उसका अनुमान करा देता है, यानी उनके बाह्य उनकी मुद्रा देखकर उनके अंतरंग वितरागता का अनुमान हो सकता है, ऐसा कहते हैं। अनुमान कराने वाला बहिरंग शुद्ध रूप होने से जो रूप विशिष्ट है, यानी तो 28 मुलकों तो पालन करने वाले है ही है, परंतु उनकी मित्रा से भी पता चलता है अंतरंग में उनकी कैसी शुद्धता है। बालकत्व और वृद्धत्व से होने वाली बुद्धि विकलता का अभाव होने से क्या कहते हैं? बालकत्व यानी क्या है? बचपन। वृद्धत्व यानी अभी उम्र हो गई, तो उसके कारण क्या हो सकता है? बुद्धि विकलता। विकलता नहीं, विकलता, बुद्धि की विकलता, अस्थिरता। क्या होता है, बच्चों को तो अभी उतना अभ्यास नहीं है, बुद्धि की इतनी प्रगल्भता नहीं है, और वृद्धावस्था में हो सकता है कि कोई चीज भूल भी जाते हैं ना, यानी या हाँ स्मरण में नहीं आ सकते, या कुछ गलत भी प्रस्तुत हो जावे, ऐसे भी हो जाता है। क्या कहते हैं? बालकत्व और वृद्धत्व से होने वाली बुद्धि विकलता का अभाव होने से तथा यवनोद्रेक की विक्रिया से रहित।
विकलता जो लिखा है,
विकलता, हाँ,
पको आधा आधा और वह पूरा, ऐसा
ऐसा ही विकलवता
लिखा
है। एक मिनट, मैं सॉरी, आप इस पुस्तक में देख रहे हैं, मैं देखती हूँ। बुद्धि विकलवता नो, वो बराबर एक ही है,
क्लो, क्लो और वो
बराबर एक, आधा और ल एक पूरा,
ल भी आधा चाहिए।
नहीं नहीं नहीं, विकल विकल नहीं है, विकलवता, विकलवता चार अक्षर चाहिए, बराबर है। बुद्धि विकलवता नो, तथा क्या कहते हैं, पढ़ू आ गया, यवनोद्रेक की विक्रिया से रहित। आपके बुद्धि होने, बालक भी नहीं चाहिए, वृद्ध भी नहीं चाहिए, हा? तो युवा होने चाहिए, पर युवा होने पर भी युवा का जो उद्रेक कहते ना, यवन का जोश, ये उसकी अतिशयता, तो उससे उसकी विक्रिया से रहित, यानी युवा है इसलिए कुछ उसको जोश आया बहुत, ऐसे नहीं होने चाहिए। ऐसी बुद्धि होने से जो वय विशिष्ट है और यथोक्त श्रामण्य का आचरण करने, यथोक्त यथा उक्त जैसे बताया है, कहाँ बताया है? आगम ग्रंथों में, आचार ग्रंथों में जैसा बताया है, ऐसा जो श्रामण्य यानी मुनिपना, उसका आचरण करने तथा आचरण कराने संबंधी, स्वयं कर रहे हैं दूसरों से करा लेते हैं, उस संबंधी पौरुषेय दोषों को निशेषतया नष्ट कर देने से, यानी उस संबंधी जो कुछ मनुष्य के लिए जो ऐसे संभवित ऐसे कोई दोष हो सकते हैं, उन दोषों को पूरा का पूरा नष्ट किया है जिन्होंने। क्या कहते हैं? देखो, श्रामण्य का आचरण करने और कराने संबंधी जो कोई दोष हो सकते हैं, पौरुष यानी मनुष्यकृत जो कोई दोष हो सकते हैं, उन दोषों को जिन्होंने नष्ट किया है, यानी उनको मुनिपना अंगीकार, स्वयं आचरण कर रहे और आचरण करा रहे, उसमें कोई भी दोष बाकी नहीं है, नष्ट कर देने से मुमुक्षुओं के द्वारा प्रायश्चित्तादि के लिए जिनका बहु आश्रय लिया जाता है। क्या कहते हैं? मुमुक्षु ने यहाँ जो अन्य मुनि जो है उनकी मुख्यता से यहाँ मुमुक्षु कह दिया है। अभी आजकल मुमुक्षु ने जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो मुमुक्षु, वो अर्थ नहीं है वहां पर, बाकी जो संघ के मुनिराज है उनको भी मुमुक्षु कहेंगे, और वो प्रायश्चित्तादि के लिए आचार्य के पास जाएंगे। तो कहते हैं कि मुमुक्षु नहीं, उनके कोई दोष नहीं है, इसलिए अन्य जो मुनि है मुमुक्षु है उनके द्वारा प्रायश्चित्तादि के लिए जिनका बहु आश्रय लिया जाता है, उसके लिए उन्हीं का आश्रय लिया जाता है, उन्हीं के पास जाते हैं, वो आचार्य है ना, अन्य से वो सारे आचार करवा लेते हैं सही रूप से। इसलिए जो श्रमणों को अतिष्ट है, श्रमणों को बताया ना, अन्य मुनियों को वे इष्ट है, अति इष्ट है, ऐसे गणी के निकट, ये सब आचार्य की विशेषताएं बताइए। ऊपर तो केवल इतना ही दिया था, कैसे दिया था, कुल रूप और वय विशिष्ट, उसमें से उन्होंने ये सारी बातें निकाल कर बताई टीका में। तो कहते ऐसे जो आचार्य है, गणी है, उनके निकट जाकर, उनके पास जाकर शुद्धात्म तत्व की साधक, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के साधक आचार्य के निकट। गणी का अर्थ क्या किया, देखो गणी के निकट के लिए उन्होंने डैश करके उसी का अर्थ समझाया। तो कहते शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के साधक आचार्य, यानी वो स्वयं आत्मानुभवी है ही है और उसकी साधना में लगे हैं, ऐसे जो आचार्य है उनके निकट, उनके पास। तो उनके पास जाकर क्या करता है, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि से मुझे अनुग्रहित करो, यानी शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि ये चाहते हैं, ऐसी जो सिद्धि आपको प्राप्त हुई है तो आप मुझे उससे अनुग्रहित करो, यानी आप मुझे वो दे दो। पुनात है स्वयं से, फिर भी इसी तरह से विनय पूर्वक उनके जाकर आप मुझे स्वीकार करो, अनुग्रहित करो, उपकृत करो, ऐसे कहने की ऐसे पद्धति है चरणान योग की। ऐसा कहकर उस गणी के द्वारा, नहीं नहीं एक मिनट, एक वाक्य रह गया, फिर पढ़ती हूँ। उनके आचार्य के निकट शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि से मुझे अनुग्रहित करो, ऐसा कहकर श्रामण्यार्थी जाता हुआ, यानी उनके पास जाकर वो कहता है, प्रणत होता है, ऐसे कहता भी है, विनय पूर्वक नमस्कार करता है। इस प्रकार यह तुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि, ऐसा कहकर उस गणी के द्वारा वह श्रामण्यार्थी प्रार्थित अर्थ से संयुक्त किया जाता हुआ अनुग्रहित होता है। क्या कहना चाहते हैं, इनकी अमृत चंद्राचार्य की भाषा ऐसे गरिष्ठ है, समझेंगे अपनी भाषा में। ये गणी कैसे, उसको हमने देखा था, ऐसे जो आचार्य है, गणी यानी आचार्य, उनके पास जाकर नमस्कार करके क्या कहता है कि शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप जो सिद्धि है, ऐसी सिद्धि से मुझे अनुग्रहित करो। अब आचार्य क्या करते हैं, देखो आचार्य कहते हैं इस प्रकार यह तुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि, ऐसा कहकर, यानी वो कहेंगे यह है तेरी ऐसी सिद्धि, ऐसे कुछ निकाल के देने वाले नहीं है, ये कहने की बात है। ऐसा कहकर उस गणी के द्वारा, यानी आचार्य के द्वारा, वह श्रामण्यार्थी प्रार्थित अर्थ से संयुक्त किया जाता है। प्रार्थित यानी उन्होंने जो मांगी थी ना चीज, क्यों मुझे ये सिद्धि चाहिए, वो प्रार्थित चीज यानी उनके मांगी हुई चीज, यानी प्रार्थना की थी उनको मुझे अनुग्रहित करो करके, तो प्रार्थित अर्थ से संयुक्त किया जाता हुआ। उन्होंने क्या बताया था, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि से मुझे अनुग्रहित करो। अब गणी क्या कहेंगे कि इस प्रकार यह तुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि, ऐसा कहकर उनको अनुग्रहित वो करते हैं, या वो अनुग्रहित होता है। अनुग्रहित यानी क्या, उपकृत, आप मुझे उपकृत कीजिए, ऐसा कहेंगे। और ये क्या, मुनिराज उसको अनुग्रहित करेंगे,
आप मुझ पर मेहरबानी करो।
हाँ, इस तरह से वो अनुग्रहित होता है, मेहरबान हो जाए, यानी उनके द्वारा मेहरबान हो जाता है। अब हम जयसेन आचार्य की टीका पढ़ेंगे 202 के बाद।
अच्छा,
अभी संस्कृत में देखना, मैं इसमें से पढ़ रही हूँ, यानी अनुग्रहित होता है, उपकृत होता है, उनके द्वारा उपकृत होता है, ऐसा कहना, पैसिव टेंस, या वे उपकार करते, उपकार करते हैं ना, क्या वो उनको कहेंगे, आशीर्वाद देंगे, थैंकफुल ये होगा, अनुग्रहित होता है, ऐसे थैंक्स के लिए संस्कृत में क्या कहते हैं, अनुग्रहित अस्मि, अस्मि अनुग्रहित अस्मि, अनुग्रहित अस्मि, वो जोड़ जोड़ अक्षर होता है, यानी किसी को थैंक्स कहना है तो संस्कृत में कहेंगे अनुग्रहीतास्मि, आस्मि ने अनुग्रहीतास्मि, ता करना ता, अनुग्रहित और अ मिलकर
ता,
हाँ अनुग्रहीतास्मि।
अभी घर में जाके अपने बेटे को बोलना कि मैं तेरे बेटे को संभालती हूँ, तू मेरे को अनुग्रहीतास्मि कह।
चलो अभी हम जयसेन आचार्य की टीका पढ़ेंगे। अथ जिन दीक्षार्थी भव्यो जैनाचार्यम आश्रयति। अभी यहाँ रेगुलर शब्द वापरे उन्होंने कि जो जिन दीक्षार्थी है, जिन दीक्षा जो लेना चाहता है, ऐसा जो भव्य है वो जैन आचार्य का आश्रय लेता है, यानी उनके पास जाता है। वहां गणी लिखा था, यहाँ जैन आचार्य लिख दिया है ना। समणम यानी श्रवण। ये श्रवण कैसे है? निंदा प्रशंसादि समचित्तत्वेन पूर्व सूत्रोदित निश्चय व्यवहार पंचाचारस्य आचरण आचारण प्रवीणत्वात् श्रवणम। अभी श्रवण यानी जो आचार्य है वो कैसे है उसकी बात चल रही है। तो पहले में पहले कहते हैं कि समचित्त वाले हैं। समन शब्द है ना, तो निंदा प्रशंसा आदि में सब समझ लेना, शत्रु मित्र या अन्य अन्य जो कुछ इष्ट अनिष्ट लगते हैं चीजें उनमें समता भाव वाले जो है, तो निंदा प्रशंसा आदि में समचित्त होने से समचित्तत्व, समचित्तत्व है ना, यानी समचित्तत्व होने से, समता भाव होने से पूर्व सूत्रोदित, पूर्व सूत्र में बताए हुए निश्चय व्यवहार पंचाचारस्य, निश्चय व्यवहार पंचाचार के आचरण आचारण, आचरण स्वयं आचरण करना और आचरण ने दूसरों से आचरण करवा लेना, इसमें जो प्रवीण है तो उस प्रवीणता के कारण प्रवीणत्वात् श्रमणम, उसके कारण उनको श्रमण कहा। ये समण यानी श्रमण का अर्थ हुआ। और वो कैसे है? गुणढ्यम, हमने देखा था गुणाढ्य कहा था उनको। चतुरशीति लक्षण गुण अष्टादश सहस्र शील सहकारी कारण उत्तम निज शुद्धात्म अनुभूति गुणेन आढ्यम यानी भृतम परिपूर्णत्वात् गुणाढ्यम। क्या कहते हैं? चतुरशीति लक्षण, ये 84 लाख गुण, चतुरशीति लक्ष गुण है ना, यानी लाख गुण, 84 लाख गुण और अष्टादश सहस्र 18,000 शील के भेद है, 18,000 प्रकार के शील और 84 लाख प्रकार के उनके 84 लाख गुण। सहकारी कारण, ऐसे जो सहकारी कारण उत्तम निज शुद्धात्म अनुभूति गुणेन आढ्यम, और जो निज शुद्धात्म अनुभूति रूप जो गुण है उससे आढ्य यानी उससे परिपूर्ण होने से उनको गुणाढ्य कहा है। यानी उनको निश्चय से तो कैसे है, निज शुद्धात्मा रूप अनुभूति रूप गुण से वो परिपूर्ण है, और बाह्य में 84 लाख गुण और 18,000 शील इनका पालन करने वाले कुल रूव वयो विशिष्टम। अभी कुल यानी कैसे, उच्च कुल वाले हैं। तो लोग दुगुंछा रहितत्वेन जिन दीक्षा योग्यम कुलम बन्यते, यानी जिसको कहेंगे लोक में जिसको जिसकी निंदा वगैरह हो रही है ऐसा कुल नहीं है। दुगुंछा यानी लोग जिसका तिरस्कार करते हैं ऐसे कुल से रहित है, यानी लोग उनके कोई दोष नहीं लगाते उनके, ऐसा उच्च कुल के है। और कैसे जिन दीक्षा के योग्य ऐसा कुल, उसको कुल कहते हैं। अंतरंग शुद्धात्म अनुभूति ज्ञापकम निर्ग्रंथ निर्विकारम रूपम उच्चते। जो अंतरंग शुद्धात्मा अनुभूति के ज्ञापक यानी बताने वाले, ऐसा जो उनका निर्ग्रंथ निर्विकार है वो रूप कहते हैं उसको। पहला हुआ कुल फिर रूप। रूपे ने उनकी आंखें कैसे और नाक कैसे, उसको रूप नहीं कहा। शुद्धात्म संवित्ति विनाशकारी वृद्ध बाल यौवन उद्रेक जनित बुद्धि वैकल्य रहितम वयश्चेती। यानी वो तो कहेंगे कुल रूप और वय से विशिष्ट, तो वय में क्या लेना है? तो शुद्धात्मा का जो संवित्ति यानी अनुभव है उसके विनाशकारी जो है क्या हो सकता है कि बुढ़ापा या बचपना या यौवन के उद्रेक से उत्पन्न ऐसे जो बुद्धि वैकल्य होता है, ऐसे बुद्धि की विकलता हो जाएगा जाएगी तो अनुभव भी नहीं रहेगा। इसलिए कहते उससे जो रहित है यानी बुद्धि वैकल्य से रहित उसको कहेंगे वय। तई ही यानी उनके तई यानी अनेक वचन है ना, कौन से रूप कुल रूप और वय उससे विशिष्ट। तई ही कुल रूप वयो भी ही विशिष्टत्वात् यानी कुल रूप और वय इनके द्वारा विशिष्ट होने से कुल रूप वयो विशिष्टम ऐसे उनका विशेषण बताया। ये मुनिराज कैसे कुल रूप और वय से विशिष्ट है। इष्टतरम यानी इष्टतरम सम्मतम यानी सम्मतम सबको सम्मत है, इष्ट है सभी अन्य यानी लौकिक जनों को भी और मुनिराजों को संघ को भी इष्ट है। कहीं किनके द्वारा इष्ट है, किनको इष्ट होते हैं? समने हिम बताए ना अन्य मुनियों को। निज परमात्म तत्व भावना सहित समचित्त श्रमण ही अन्य आचार्य ही यानी वो सम्मत है। किनके द्वारा सम्मत है? तो निज परमात्म तत्व के भावना सहित समचित्त वाले ऐसे जो अन्य आचार्य है, श्रमण भी है और अन्य आचार्य भी है, मुनिराज भी है और अन्य आचार्य भी है, उनके द्वारा वो सम्मत है, इष्ट है। गणिम एवं विध गुण विशिष्टम इस प्रकार के गुणों से सहित ऐसे परमात्म भावना साधक दीक्षादायकम आचार्यम। गणी किसको कहा? कि इतने सारे गुणों से सहित ऐसे जो परमात्म भावना के साधक ऐसी जो दीक्षा देने वाले आचार्य है उसको गणी कहा। ये दीक्षा देने वाले तंपि पणदो न केवलम तम आचार्यम आश्रितो भवती प्रणतोपि भवती यानी न केवल उन आचार्य का आश्रय करते हैं उनके समीप जाते हैं, नहीं केवल वहां जाके खड़े रहते ऐसा नहीं, उनको प्रणाम करते हैं। केन रूपेण किस रूप से उनको प्रणाम करते हैं? तो परिच्छमम हे भगवान यानी मेरा स्वीकार करो, इससे जाके बताएंगे। अनंत ज्ञानादि निज गुण संपत्ति कारणभूताया अनादिकाले अत्यंत दुर्लभाया भाव सहित जिन दीक्षायाः प्रदानेन प्रसादेन माम प्रतिच्छ स्वीकुरु। इन्हें क्या कहते हैं भगवान? किसको कह रहे? आचार्य को। हे आचार्य, हे भगवान, कि अनंत ज्ञानादि निज गुण संपत्ति के कारणभूत और अनादिकाल से अत्यंत दुर्लभ ऐसी ये जो भाव सहित जिन दीक्षा है उस दीक्षा का प्रदान करना आप मुझे, उस प्रदान से यानी वो दीक्षा के दान से या प्रसाद से आप मेरे मुझे स्वीकार करो, ऐसा वो वहां पर याचना करते हैं। चेदी अनुगहिदो न केवलम प्रणतो यानी केवल प्रणाम ही नहीं करते, न केवलम प्रणतो भवती तेन आचार्येन अनुगृहीतः स्वीकृतश्च भवति यानी केवल वो नमस्कार करके किया उसने ऐसा नहीं है, आचार्य के द्वारा भी वो अनुग्रहित किया जाता है। यानी वो क्या कैसे रसे वो स्वीकार करते हैं कि हे भव्य, वो जो आचार्य है वो उनको संबोधन करेंगे, हे भव्य निस्सार संसारे। ये संसार कैसा है? निस्सार है। निस्सार ऐसा जो संसार है, दोनों में सार शब्द है ना, कि निस्सार ऐसे संसार में दुर्लभ बोधिम प्राप्य दुर्लभ ऐसा ज्ञान कौन सा सम्यक ज्ञान प्राप्त करके निज शुद्धात्म भावना रूपया निश्चय चतुर्विध आराधनया यानी निज शुद्धात्म भावना रूप ये जो निश्चय चतुर्विधा आराधना है, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, आराधना चार प्रकार की बताएंगे, जैसे पंचाचार पांच प्रकार के बताए, वैसे आचार भी चार, चतुर्विधा आराधना चार प्रकार की आराधना कहेंगे। उस आराधना से मनुष्य जन्म सफलम कुर्वित इति अनेन प्रकारेण, यानी मनुष्य जन्म तुम सफल करो इस तरह से, इस प्रकार से अनुग्रहीतो भवति इति अर्थ है, यानी वो अनुग्रहित भी हो जाता है, प्रणत हुआ और अनुग्रहित हुआ, यानी उसने प्रणाम किया और आचार्य ने उनको इस तरह से उनका स्वीकार किया। ये तो टीका हुई, अब हम गुरुदेव का प्रवचन पढ़ेंगे।
फोर्टी नाइन
पर नीचे लास्ट पैराग्राफ, नीचे से तीसरी लाइन, प्रणत थई। देखो शिष्य गुरु के पास जाते हैं, महामुनि भावलिंगी संत है, उनके पास जाता है, उसको उनकी पहचान है, यह मुनि भावलिंगी संत है। देखो इतनी पहचान है, मुनिपना लेने वाले को भान है, क्या कहा, सामने वाला भी जीव वो तो सच्चे भावलिंगी संत है, ऐसे पहचान है उसको, पहचान नहीं पहचान है, समझ में आया। मुनिपना लेने को अपना भान है और ये साधु भी भावलिंगी है, ऐसा भाव है, ऐसी पहचान होती है। स्वयं तो आत्मानुभवी है ही, और अभी मुनि दीक्षा लेने जा रहा है, तो ये जो आचार्य है उनकी भी इसको सही रूप से वो भावलिंगी इसकी पहचान है, ये साधु भी भावलिंगी ऐसा भान है, ऐसी पहचान होती है। समय दर्शन में अगले प्राणी की क्या दशा है उसकी पहचान आ जाती है, समझ में आया। यानी जो स्वयं आत्मानुभूति, आत्मानुभव जिसको हुआ है, वो सामने वाले जीव का अनुमान हो सकता है, उसको हो जाता है, और ये तो वितरागी संत है, वो जरूर ख्याल में आ जाती है बात। प्रश्न पूछते काहे की पहचान होती है, समाधान, उसके दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा अंदर की कैसी है, वह प्रकार ख्याल में आ जाता है, क्योंकि जो इतना उत्कृष्ट जो कहेंगे वितरागता का धारी है, उसके जो बाह्य दशा से भी उसका और उसके वाणी से, उसके कथन से उनकी पहचान हो जाती है, वह प्रकार ख्याल में आ जाता है। धवल में प्रश्न है, उसकी चर्चा हमारे यहाँ हुई थी, कुंभोज में एक साधु है ना, हम दो दिन गए थे ना, तो बराबर प्रवचन सुनते थे, समय सार सुनते थे, दो घंटा चर्चा हुई थी, दूसरे विद्वान भी थे, उन्होंने बुलाया था, उन्होंने पूछा उसकी पहचान होती है कि नहीं, हमने कहा धवल में ऐसा है, देखो सर्वार सिद्धि में ऐसा है, सर्वार सिद्धि वो वचन ही का है ना, किसने लिखी और किसके ऊपर लिखी है सर्वार सिद्धि, नहीं नहीं नहीं, सर्वार सिद्धि वचन ही का जो है ना, वचन ही का, देखो सर्वार सिद्धि क्या हो तो तत्वार सूत्र की जो टीका है, हाँ, और उसकी वचनिका किसने लिखी है, हाँ, परंतु ये वचनिका तो इन्होंने लिखी ना, सदा सुखदास जी की है ना, वो ढूंढारी भाषा में है ना वचनिका, सर्वार सिद्धि वचनिका, हाँ, उसमें ऐसा है, मति ज्ञान अवग्रह यहाँ अवाय धारण वहां दूसरी बात है, यह दक्षिणी है या कौन है ऐसी बात है। धवल में तो ऐसा है कि यह भवी है या अभवी है, ऐसा प्रश्न उठाया है। मति ज्ञान के निर्मलत्व पने में अवग्रह यह अवाय धारणा में यह प्राणी भवी है या अभवी है, ऐसा विचार उठाया है। मति ज्ञान में उसे ऐसा निर्णय हो जाता है कि यह प्राणी समय दर्शन ज्ञान और चारित्रवंत है, इसलिए भवी है, ज्ञान हो गया, ऐसा धवल में है। समझ में आया? वर्तमान में तो ऐसा कहते हैं कि हमें मालूम नहीं पड़े, सामने वाले का मालूम पड़े नहीं, अपना मालूम पड़े नहीं, ले लो व्रत। अभी प्ररूपणा क्या चलती है? अरे अपने को सम्यक दर्शन हुआ वो भी नहीं पता चलता, और सामने वाला जीव वितरागी है कि नहीं, वो सच्चा मुनि है कि नहीं, वो भी पता नहीं चलता, बस खाली व्रत ले लो। अरे भगवान, अंधा है। बहुत वहां बहुत चर्चा हुई थी, दो दो घंटा चर्चा हुई थी। क्या कहते हैं कुंभोज, बाहुबली कुंभोज, क्या कहते हैं देशभूषण, देशभूषण मोक्ष पधारे, कुंथलगिरी, कुंथलगिरी कुंभोज नहीं, कुंभोज तो हम दो बार गए थे, लेकिन वहां नहीं थे, कुंथलगिरी थे, वहां गए थे, कुंथलगिरी देशभूषण है ना, मालूम है? देशभूषण और कुलभूषण दो वहां से मोक्ष गए हैं। कुंथलगिरी गए थे कभी? गए? अच्छा, वेरी गुड। हाँ, वहां बहुत चर्चा हुई थी, बराबर सुनते थे, मार्ग तो दूसरा है सुनते थे, पीछे वो बात करते थे। पर की कैसे खबर पड़े? पर की खबर पड़े, सम्यक ज्ञानी को पर की भी खबर पड़े। यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रवंत है, ऐसा उसका वेदन ख्याल में आ जाए। उसके द्वारा भवी है ऐसा निर्णय कर लेते हैं। आहा हा, वह कहते, वह नहीं, वह कहते हैं, वह के ऊपर मात्रा नहीं चाहिए। देखो ये हमने पढ़ा था ना नीचे, किसके पास दीक्षा लेनी, वे कौन है, उसका उसे भान है। समझ में आया? अपना भी भान है और पर का भी भान है, यानी जहां से जिसके पास दीक्षा लेना है उनको भी उनको निर्णय है, पता है। ऐसा अंधे अंधे नहीं है, अपनी भी खबर नहीं कौन है, क्या चलता है और क्या लेता हूं, और पर क्या है उसकी खबर नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आया? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में पर का भी पता लग जाए, उसकी चेष्टा, चेष्टा यानी उनके जो हाव भाव जो है ना, भाषा बोले, शैली बोले, तो पता चल जाता है, यह दूसरी चीज है। समझ में आया? देखो ये कल से ही पढ़ेंगे टीका, यहीं से प्रारंभ होती है ना। हाँ, आज यहां रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो। लक्ष्मी।